Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunilakanta Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya Sant ya Shiv Bhakt Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Thirunilakanta hai. प्राचीन काल में तिल्लई यानी कि चिदंबरम में एक कुम्हार परिवार रहता था। नटराज शिव की कृपा से उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। विष को कंठ में धारण करने वाले शिव के तिर नीलकंठ नाम को रटते रहने के कारण उस कुम्हार बालक का असली नाम लोग भूल गए और उनका नाम तिर नीलकंठ से ही प्रसिद्ध हो गया। उनकी मान्यता यह थी कि शिव ने अपने कंठ में विष धारण करके मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि वे उनकी विघ्न बाधाओं को सदा दूर करेंगे। उनकी युवती पत्नी धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण और लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार तिरुनीलकंठ नगर में एक रात्रि व्यतीत करके प्रातः घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके बाहर रहने का कारण जानना चाहा। यह ज्ञात होने पर कि पति एक वैश्या के साथ रात व्यतीत करके आए हैं, उनके विश्वास को ठेस लगी। उसने उसी क्षण कहा, तिरुनीलकंठ की शपथ, आप अब हमें स्पर्श नहीं करना। अपनी भूल और दुर्बलता पर पश्चाताप करते हुए नीलकंठ ने कहा, तुमने हमें शब्द का प्रयोग किया है, मैं आज से किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा। पवित्रता की प्रतिमूर्ति पत्नी गृहस्थ के सभी दायित्वों को निर्वाह करती रही। यद्यपि उस दिन से उनका शारीरिक संबंध समाप्त हो गया, परंतु किसी के कानों में यह खबर न हुई। इस घटना के अनेकानेक वर्ष बाद एक बार एक शिव भक्त अपना भिक्षा पात्र तिरुनीलकंठर के पास धरोहर के रूप में छोड़ गए। जब वे शिव योगी विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करके अपना भिक्षा पात्र लेने आए तो तिरुनीलकंठ उस पात्र को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। बदले में नवीन भिक्षा पात्र देने के आग्रह को अस्वीकार करने पर योगी ने तिरुनीलकंठर से यह कहा कि तुम चोर हो। उन पर चोरी का लांछन लगाया। मामला न्यायालय तक पहुंच गया। तिल्लई चिदंबरम निवासी ब्राह्मणों के न्यायालय में वृद्ध योगी ने कुशलतापूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायमंडल के धर्मस्थ सदस्यों ने तिरुनीलकंठ को बुलाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। वादी के आरोपों को स्वीकार करते हुए तिरुनीलकंठ ने प्रतिवाद किया कि वे चोर नहीं है, परंतु भिक्षा पात्र कहीं खो गया है। न्यायाधीश ने निर्णय दिया, इन्होंने जो पात्र आपके पास थाती के रूप में रखा था वह आपसे गायब हो गया है। ऐसी स्थिति में यही उचित लगता है कि इन शिवयोगी की इच्छा के अनुसार आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस तालाब में डुबकी लगाएं और शपथ पूर्वक कहें कि आपने चोरी नहीं की है। वृद्ध तिरुनीलकंठ पत्नी के साथ साथ तालाब में उतरे। जल में डुबकी लगाने से पूर्व उन्होंने सारी सभा को पत्नी का हाथ न पकड़ने का मूल कारण रूप अपनी वैश्य गमन की घटना और पत्नी के शपथ वाक्य का प्रसंग सुनाकर स्पष्टीकरण किया। फिर एक बांस की छड़ी को पकड़े हुए वृद्ध दंपति ने जल में डुबकी लगाई। जल से बाहर निकले तब तक दोनों का कायाकल्प हो गया था। दोनों नवीन यौवन की दीप्ति से दमक रहे थे। यह उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने ढूंढा तो वह वृद्ध शिवयोगी कहीं नजर नहीं आए। तभी उनको ज्ञात हुआ कि वे शिवयोगी नहीं बल्कि परंतु भगवान शिव स्वयं थे। तिरुनीलकंठ के समय में पुरुषों के का वैशाग्रह जाना एक साधारण सी घटना थी, पर तिरुनीलकंठ की पत्नी ने इसे अपने प्रेम और सेवा की अवहेलना समझा। तिरुनीलकंठ की शपथ लेकर कहा गया वाक्य वास्तव में पति के वैश्यगमन से हुए मानसिक आघात का द्योतक था। पत्नी की मर्यादा मानो खंडित हो गई हो। शिव द्वारा की गई इस लीला के मूल में तिरुनीलकंठ के पश्चाताप, त्याग भावना और पत्नी के प्रति किए गए अन्याय के लिए शारीरिक मानसिक दंड की स्वीकृति थी। अपने पश्चाताप द्वारा उन्होंने जो साधना की उसे समाज में उजागर कर यह कथा भक्त के आध्यात्मिक पुनर्जन्म को वर्णन करती है, इसीलिए उनका नाम नायनमार में गिना गया है। ओम नमः शिवाय।